ते सर्वदां वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सार्वजातं सहगण रघुनाथं विगन्तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपीश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौरङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुतदेवि प्रणमामि हरिवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुम्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण रूपामूर्ति अभय चरणानि श्री प्रभुपाद चित्रोपाय महामहासौखी परम सौभाग्य है कि आज बहुत ही महान दिन है। संसार के विश्वभर के महान और परम शुद्ध भक्त श्री प्रभुपाद जी का द्रोहा उत्सव है आज, और हमारा सौभाग्य है कि इस सुंदर दिवस में उन महान कृष्ण भक्त के विषय में कुछ शब्द करने का अवसर मिला है। हमारा अधिकार नहीं है, हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि हम उनके विषय में कुछ बोल सकें, क्योंकि भगवान के विषय में बोलना बहुत सरल है। भगवान के विषय में बोलना, भगवान को समझना और भगवान की लीलाओं को बताना सरल होता है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं वैष्णव प्रिया मुद्रा, उनको समझना बहुत कठिन है। तो आप सब प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद दीजिए कि सही समय में सही शब्दों और सही भाव के साथ श्री प्रभुपाद जी की स्तुति करने का प्रयास करूं, कर्ण इंद्रियों को जो श्रोतागण है उनके कर्ण इंद्रियों को संतुष्टि, हृदय में आनंद और प्रवक्ता के रूप में मेरे अंतःकरण की शुद्धि हो, इसी विश्वास के साथ कि आप सब मुझे आशीर्वाद देंगे। मैं कुछ यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी की महानता के विषय में बोलने का प्रयास करूंगी। शास्त्र वेद और उपनिषदों के हिसाब से संसार में केवल तीन तत्व हैं, ईश्वर जीव और माया। ईश्वर वो जो भगवान है, जीव मतलब हम सब, और ये पूरा संसार जो कि माया है, और वो हमें भगवान से दूर करने का प्रयास करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता 7.14 में कहते हैं, दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरध्यया, कि ये जो मेरी माया है उसको पार करना। बहुत कठिन है। भगवान कहते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं कि ये मेरी माया है और इसको पार करना बहुत कठिन है, लेकिन यदि आपको इसको पार करना है तो उसका एक ही तरीका है, माम एव ये प्रपद्यन्ते, माया में दम धरते थे। जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को पार कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये माया जो है उसको केवल कृष्ण कंट्रोल कर सकते हैं। और जब कृष्ण देखते हैं कि मेरा भक्त मेरी ओर आया है तो वो माया को ऑर्डर देते हैं, खबरदार ये मेरा आदमी है, ये मेरा है, इस पर अटैक करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। तो ये बहुत ही हमारा माया को पार करने का तो एक सरल साधन है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। लेकिन कृष्ण की शरण में जाने का अधिकार हमको तब तक नहीं मिलता है, तब तक हमें योग्यता नहीं मिलती है जब तक कि हमें किसी शुद्ध प्रमाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त नहीं होता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं ब्रह्मांड भ्रम्यते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाइए भक्ति लगा। करोड़ों करोड़ों जीव है, 84 लाख तो योनियां हैं, उन योनियों में भी करोड़ों करोड़ों जीव हैं जो ना जाने कितने कितने करोड़ों जन्मों से भटक रहे हैं। जब उनके प्रयास से भगवान प्रसन्न होते हैं ना, तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उनको एक शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य प्रदान करते हैं। जीव को माया के चुंगल से बचाने के लिए, क्योंकि भगवान इस संसार में आने के बाद जीव जो है वो माया के अंदर इतना ज्यादा उलझ जाता है कि वो भगवान को भूल जाता है। कृष्ण बोलिया जीव भगवान शंकर निकट स्थित माया तारे झपटिया धरे। वो यहाँ पर आता है, कृष्ण से प्रॉमिस तो किया होता है कि संसार में जाऊंगा, तुमसे तुम्हारा भजन करूंगा और तुम्हारी भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं करूंगा। मनुष्य जीवन में एक ही कार्य है, ये निर्देह मनुष्य का देह मिला ही इसलिए है। क्यों मिला है? सिर्फ प्रभु जी पायण लाए, सिर्फ कृष्ण को प्राप्त करने के लिए और कोई उद्देश्य और कार्य तेरे कितने न काम और कुछ नहीं है। जो भी आप कर रहे हैं, ये जो मनुष्य देह है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान गोविंद मिलन के लिए, तेरी बिरिया ये कृष्ण की प्राप्ति के लिए है। और मनुष्य संसार में आता है तो क्या करता है, कृष्ण को भूल जाता है। और फिर जब माया देखती है, वाह ये तो मुझे मिल गया, मुझे बगैर सैलरी के एक अच्छा सा सर्वेंट मिल गया, और उसको निकट स्थित माया तारे झपटी गए, माया उसको अपने वश में कर देती है। लेकिन कृष्ण कितने कृपालु हैं, कृष्ण भिन्न भिन्न प्रकार की योजना बनाते रहते हैं और चाहते हैं कि मैं कैसे इस जीव का इस माया से उद्धार करूं। क्यों करते हैं? क्योंकि जीव जो है वो भगवान का अंश है। वो घोषणा करते हुए कहते हैं ममई वंश जीव, तुम मेरे हो तो मेरे पास आकर ही आनंदित होते होगे, उसके अतिरिक्त तुम्हारे आनंद का संतुष्टि का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगवान योजना बनाते हैं कि मैं कैसे इस जीव को पुनः अपने ओर लेकर आऊं। और इन भिन्न भिन्न योजनाओं में से जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ प्रमुख योजना है वो है जब भगवान गुरु को प्रकट करते हैं। वास्तव में भगवान ही अपने एक अंश से गुरु स्वरूप में भौतिक जगत में आते हैं। जब भगवान की करुणा जीव पर होती है तो भगवान स्वयं ही उतरते हैं गुरु के रूप में। सभी शास्त्र कहते हैं कि ये जो गुरु है वो साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। और जो बिना गुरु के भगवत भक्ति का प्रयास करे, अगर हम संपूर्ण रूपेण नवदा भक्ति का पालन करते हैं, अनंत अनंत जन्मों तक नाम जपते रहे, परंतु जब तक कोई शुद्ध वैष्णव गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं होगा तब तक भगवत प्राप्ति असंभव एवं भगवत प्राप्ति नहीं मिल सकती। और इसके विपरीत भगवान कहते हैं कि अगर किसी शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय मिल जाए तो क्या होगा, तो फिर यद गत्वा नामिनं वन्ते गद्धाम परमं, वो भगवान का नाम जिसके अंदर जाकर कभी जरा मरण के चक्कर में फंसने के लिए वापस नहीं आना पड़ता, वो प्राप्त होता है। गुरु की महिमा जानने से पहले गुरु का अर्थ जान लेना ज्यादा आवश्यक है। गुरु गुरु तो सब कहते हैं और इस संसार में तो बहुत विभिन्न प्रकार के गुरुओं के विषय में हर किसी को गुरु कहा जाता है। कुछ भी कोई अगर हमको कराटे सिखाता है तो कराटे गुरु, चेस सिखाता है तो चेस गुरु बन जाता है, और अगर कोई हमको कुछ भी सिखाता है संसार में वो अलग अलग प्रकार के गुरु होते हैं। लेकिन वैदिक शब्दकोश के अनुसार गुरु का एक ही मतलब है। गुरु का मतलब ये नहीं कि कुछ भी सिखा दे वो आपका गुरु बन जाए, नहीं। शास्त्र कहता है कि गु शब्दस्तु अंधकारस्यास्त, गु का अर्थ है अंधकार, रू शब्द तव निरोधक, रू का मतलब है वो जो अंधकार से आपको बाहर निकाल दे। अंधकार विरेधुतु गुरु इति विदित्यते, कि अंधकार से जो बाहर निकाले वही गुरु है। इस भौतिक जगत में अविद्या का अंधकार है और हम सब जीव अविद्या के कारण अपने आप को भूल गए हैं। हमें ये नहीं पता हम कहाँ से जाएं, इसलिए जब हम गुरु को प्रणाम करते हैं तो क्या बोलते हैं, ओम अज्ञान तिमरानंद, मैं अंधकार के गहरे कूप में गिरा हुआ था और गुरु महाराज ने ज्ञान की रोशनी प्रज्वलित करके मुझे उस अंधकार से निकाला। तो जो अंधकार को ज्ञान प्रस्तुत करके जो पूर्ण रूप से जीव को अंधकार से बाहर निकाले और भगवान के चरण कमल तक लेके जाए, बस वही गुरु है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि ये जो मनुष्य देह है वो क्या है, वो एक नौका की तरह है, और अगर कोई जीव समुद्र में डूब रहा है और डूबते 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 गोते खा रहा है, बस डूबने वाला, अचानक उसके हाथ में एक नौका आ जाए तो वो कितना आनंदित हो जाएगा। निर्देह माध्यम सुलदम सुलभम सुदुर्लभम, ये निर्देह जो है ये मनुष्य जो जीवन है उसके माध्यम से वो भगवान जिसको प्राप्त करना अनंत अनंत जन्मों तक बड़े बड़े देवताओं के लिए भी संभव नहीं है, सुदुर्लभ, लेकिन मनुष्य जीवन के द्वारा वो प्राप्त करना सरल हो जाता है, क्योंकि निर्देह क्या है, नौका की तरह है। लेकिन अगर नौका हमको मिल भी जाए और नौका को चलाना ना आए तो क्या हम उस समुद्र को पार कर सकते हैं, नहीं, नौका को चलाने वाला एक करुणाकर चाहिए। इसलिए आगे कहते हैं दावम स्वकल्पम गुरु करणधारम, वो जो गुरु है वो करणधार है जो हमारी इस नौका को चला के भगवान के धाम तक लेके जाता है। इसलिए गुरु होना बहुत आवश्यक है, केवल मनुष्य जीवन प्राप्त हो जाए ये काफी नहीं है, लेकिन गुरु को किसी को भी नहीं बना सकते। पहली बात कि गुरु के बगैर गोविंद की प्राप्ति संभव नहीं, और दूसरी बात कि गुरु के अंदर कुछ तो लक्षण होने चाहिए। गुरु के क्या लक्षण है, गुरु के अंदर दो लक्षण शास्त्र कहता है, एक तो श्रीत्रियम श्रीत्रियम और दूसरा ब्रह्मनिष्ठ। गुरु जो है श्रोत्रियम का मतलब होता है उसे सारे के सारे शास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान, हर शंका का निवारण शिष्य के हर एक प्रश्न का उसके पास उत्तर हो, और जब तक शिष्य के अंदर कोई संशय है तब तक वो निवारण करता रहे, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, संशयात्मा विनश्य, जब तक हृदय में संशय है तब तक तो जीव कभी भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं श्रद्धा होनी चाहिए, जब तक जीव के अंदर संशय तब तक तो श्रद्धा होगी नहीं, और भगवान कहते हैं अश्रद्ध दाना पुरुष धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार, वो मुझे नहीं पा सकता है जब तक उसके हृदय में श्रद्धा नहीं है। श्री प्रभुपाल जी श्रीमद् भागवतम के बारह स्कंद में बताते हैं कलयुग का मुख्य दुर्भाग्य है कि एक तो जीव को पता ही नहीं है कि मेरा मार्ग कौन सा है, सही रास्ता कौन सा है, पहला दुर्भाग्य। जीव खुद भी नहीं निश्चय कर पाता कि मैं किधर जाऊं। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है कि जो गुरु बनकर बैठे हैं वो स्वयं ही नहीं जानते कि मुझे इन जीवों को किधर लेके जाना है। शास्त्रों को पता ही नहीं उनको, शास्त्र के अतिरिक्त वो सब, अगर कोई शिष्य कोई सवाल पूछेगा भी ना तो पूरी दुनिया घुमा देंगे मगर कृष्ण तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ऐसा ही हो रहा है, इसलिए बताएगा कि गुरु को क्या होना चाहिए, श्रोत्र ज्ञान, सारे शास्त्रों का ज्ञान हो, खाली ज्ञान नहीं हो, ब्रह्मनिष्ठा, उसके जीवन में आचरण हो, उसका जीवन जो है वो प्रैक्टिकल उदाहरण हो, गुरु जो है वो आचार्य हो, जो 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 केवल ऊपर ऊपर से बात ना करे बल्कि अनुभवी है, वो अपने अपने कार्य को जो वो कह रहा है अपने आचरण करके सिखाए, वो ये बताए कि देखो कैसे भक्ति की जाती है। श्रीला प्रभुपाद जी से पहले इस तरह के आचार्य गुरु तो बहुत हुए संसार में, बहुत बहुत गुरु अनेकों संसार में, अनेकों संत आए, भगवान की भक्ति का उपदेश दिया, सनातन धर्म का वैदिक ज्ञान और बहुत कुछ, बहुत ही जो ये वैदिक ज्ञान है जो कि सनातन धर्म जो है वो बहुत बड़ी धरोहर माना जाता है, और कदम कदम पर समय समय पर बहुत सारे आचार्यों ने आकर उसके बारे में ज्ञान किया, उसकी चर्चा की, उसके विषय में बताया भी, लेकिन उसका जीवन में, भक्तों के जीवन में परिवर्तन आना वो इतना पता नहीं चला किसी को। लोग सुनते थे, आनंदित भी होते थे, परंतु जब तक कोई गुरु प्रैक्टिकल स्वयं आचरण नहीं करता है तब तक वो जीवों को नहीं सिखा सकता है कि कैसे आचरण करना है। ऐसे समय में भगवान श्री कृष्ण के संदेश को यथारूप में जन जन तक पहुंचाने के लिए संसार में एक ऐसे संत ने जन्म लिया जिसने अपने जीवन के अंतिम चरण में अनेकों व्यक्तिगत आपदाओं को झेलते हुए सनातन धर्म के इस महान ज्ञान को फैलाया। वैसे तो हम जानते हैं कि बहुत सारे संतों ने और भी सनातन धर्म के ज्ञान को फैलाया, परंतु श्रीला प्रभुपाद एकमात्र ऐसे संत हुए जिन्होंने भक्ति को आध्यात्मिकता को अत्यंत ही सुलभ, सहज, मधुर और प्रैक्टिकल वे से बताया कि कैसे करना है। आज श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा से विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर कृष्ण के भक्त ना हो, जहां जगन्नाथ जी की रथ यात्रा ना होती हो, जहां पर लोग हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण नहीं करते हो, जहां पर भगवान कृष्ण और राधा रानी की विग्रह की सेवा ना की जाती हो। अमेरिका हो, यूरोप हो, अरब देश हो, ताइवान हो, जापान हो, रशिया हो, घर घर में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग कृष्ण भक्ति में लीन होकर कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का एक अंग बना चुके हैं। ये केवल और केवल श्री भगवान जी की कृपा। आज हम जो कुछ भी संसार में देख रहे हैं, जहाँ जहाँ भी भक्ति का लेश मात्र भी है, वो केवल और केवल श्री भगवान जी की कृपा से है। हम सब क्या है जो थोड़ा थोड़ा बताते हैं ना कि ऐसे भक्ति करनी है, ऐसे करना, ऐसे करना, हम सब करछियां हैं। करछी होती है ना, जैसे एक सब्जी का बहुत बड़ा लेकरशा हो, उसके अंदर से कोई कुछ निकाल के दे दे, ये थोड़ा सा ले लो, ये थोड़ा सा, वो सब जो बनाया है, ये जो प्रिपरेशन है वो पहले से श्री प्रभुपाद जी करके गए हैं। वेद व्यास जी को हम परम गुरु कहते हैं, वेद व्यास जी ने सारे शास्त्रों को निर्माण कर दिया, सारे वेदों को लिख दिया, सारे वेदों का निर्माण करने के बाद एक व्यक्ति भी भक्त नहीं बन सकता था जब तक कि श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य को नहीं समझ
सकता।
श्री प्रभुपाद जी ने एक एक श्लोक को, एक एक शब्द को इतनी सरलता से लिखा, इतनी सरलता से समझाया कि हम जैसा कोई अज्ञानी मूर्ख भी अब भगवद गीता के ऊपर बोल सकते, वरना श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा ना, तो ऐसे गुरु की जब कृपा होती है तो शास्त्र कहता है मोकम गुरु वाचालम पंगु लंगयते किरम यत्कृपा तमहं वंदे करो तो वाचन, कोई गूंगा भी हो ना वो भी कविता गाना शुरू हो जाता है। पंगो लंगड़ाते गिरा डोला लंगड़ा हो टांगे भी ना हो फिर भी वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ों को चढ़ सकता है। और जब गुरु महाराज की कृपा हो तो मूर्ख भगवती पंडिता हम जैसा मूर्ख भी बोल देता है गीता के ऊपर भागवत के ऊपर, वरना गीता भागवत को समझना अपने जीवन में अप्लाई करना तो बहुत दूर की बात है। एक श्लोक एक एक श्लोक के एक एक शब्द को श्री प्रभुपाद जी ने ट्रांसलेट किया है और ये हमारे ऊपर श्री प्रभुपाद जी की असीम कृपा है। कहने को तो तिरुभाव दिवस है परंतु श्री प्रभुपाद जी ने कहा नहीं मैं कभी नहीं मरूंगा, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। इन शास्त्रों के स्वरूप में जब तक श्रीमद् प्रभुपाद जी के शास्त्र हैं, जब तक श्रीमद् भगवद्गीता का प्रचार हो रहा है, जब तक यहाँ पर एक भी भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर रहा है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम, तो उसमें श्री प्रभुपाद जी के होने का एहसास है। ये वो महान और अद्भुत संत हैं कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणार ने भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। इन्होंने 1896 में कलकत्ता में जन्म लिया था और छोटे से थे जब जगन्नाथ जी को देखते थे उनकी रथ यात्रा को देखते थे बहुत आनंदित होते थे और बचपन से ही छोटे से थे तब से ही क्रिया करते थे तब से ही भगवान की भक्ति के विषय में। उनको उनके पिताजी गौर मोंडे जो भी भक्त आते थे ना उनसे पता है क्या बोलते थे, बोलते थे मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो कि ये श्रीमती राधा रानी का बहुत अच्छा भक्त बने। सबसे यही आशीर्वाद देते थे कि इनको आशीर्वाद दो इनको बहुत अच्छा भक्त बनना और बचपन में ही पहले से भविष्यवाणी कर दी गई थी। श्री प्रभुपाद जी जब जन्म लिए थे तभी जो पंडित लोग हैं उन्होंने भविष्यवाणी करी थी जब ये बड़ा होगा तो ये पाश्चात्य देश में जाकर बहुत भक्ति का प्रचार करेगा और अनेकों मंदिर बनाएगा और ये भविष्यवाणी बिल्कुल सत्य हुई है। और जब श्री प्रभुपाद जी 1922 में पहली बार अपने आध्यात्मिक गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी से मिले उनको देखते ही पहली बार आए थे श्री प्रभुपाद जी। जब जैसे आप लोग सब बैठे हो ना क्लास में ऐसे एक अपने दोस्त के साथ वहां पर आए थे और सुन रहे थे तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने उनके चेहरे को देख के ही ना एक ही नजर में जो गुरु होते हैं ना वो जान जाते हैं कि मेरा शिष्य कितना है किस स्थिति का है। पहली दृष्टि से श्री प्रभुपाद जी को जान लिया बोला ए आप तो कितने सुंदर तरीके से इंग्लिश बोलते हो आपको अंग्रेजी इंग्लिश जो पाश्चात्य देश है फॉरेन कंट्रीज में जाकर गीता और भागवत का प्रचार करना चाहिए अंग्रेजी में किताबों का अनुवाद करना चाहिए। श्री प्रभुपाद जी बोलते मुझे उस दिन श्री प्रभुपाद जी को उनके गुरु महाराज ने ये आदेश दिया था पहली भेंट में और उस आदेश को अपने मन में रख दिया गुरु होकर पद्म वाक्य सिद्धि करिया इच्छा। उनके जीवन का एक ही लक्ष्य था कि अब मुझे इन ग्रंथों को अंग्रेजी में लिखना है और जाकर मुझे पाश्चात्य देश में इनका प्रचार करना है। कभी वो कंटिन्यू उसी समय से वो प्रचार कार्य में लग गए। भगवद्गीता पर टीका लिखते थे एक बार उन्होंने पूरी भगवद्गीता पर अंग्रेजी में टीका लिखी घर पे रखी और कहे थे कहीं पर कार्य करने के लिए लेकिन घर वापिस जब आए तो ढूंढने लगे कहाँ गई मेरी भगवद्गीता कहाँ गई। उनकी पत्नी से पूछा कि मेरी भगवद्गीता यहाँ पर थी ना आपने देखी तो बोला वो तो मैंने भंगाड़ वाले को बेच दी कबाड़ी को। बोले मेरी भगवद्गीता मैंने कितनी मेहनत से लिखी थी आपने कबाड़ी वाले को क्यों बेच दी। बोला घर में चाय बनाने के लिए पैसे नहीं थे ना मुझे चाय पीनी थी इसलिए चाय पत्ती खरीदने के लिए पति की लिखी हुई पति परमेश्वर की किताब को बेच दिया। तब उनकी पत्नी को श्री प्रभुपाद जी ने कहा आज तुम्हें निर्णय करना होगा टी और नी मैं चाहिए हूँ या तुम्हें पति चाहिए या चाय पत्ती चाहिए। उसने बोला पति चाहिए पति नहीं चाहिए चाय पत्ती चाहिए। श्री प्रभुपाद ने छोड़ दिया बोला रहो तुम चाहे उसके किसान मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि भगवान की भक्ति में रुकावटों को आपको कैसे खत्म करना है, भगवान की भक्ति में जो रुकावट आए आपके जीवन का वास्तविक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, चले गए मुझसे मानव प्राप्ति। और बहुत ही सुंदर रीति से श्रीमद् भगवद गीता का दोबारा से अंग्रेजी भाषा में ट्रांसलेट किया और 1944 में बिना किसी सहायता के बैक टू गॉड हेड मैगजीन को लिखना शुरू किया और उनको भक्ति वेदांत स्वामी था की उपाधि प्राप्त हुई और 54 साल की उम्र में उन्होंने वानप्रस्थ दिया। अधिक से अधिक समय वो अध्ययन में लिखने में, ज्यादा से ज्यादा उनकी इच्छा यही थी कि शास्त्रों को लिखकर मैं तो कितना समय रहूंगा, मैं कितने दिन तक प्रचार करूंगा, लेकिन मेरी शास्त्र सदैव करते रहेंगे। इसलिए उठते बैठते पता है 24 घंटों में सिर्फ 22 घंटे वो 22 घंटे वो कार्य करते थे, ट्रांसलेट करते थे, लिखते थे, सिर्फ 2 घंटे आराम करते थे कंटिन्यूस अव्यर्थ काम। उसने एक समय भी उन्होंने जरा सा भी व्यर्थ नहीं, हम अपने जीवन में देखें हम कितना समय व्यर्थ बिताते हैं, कितना टाइम सोने में देते हैं, कितना टाइम खाने में देते हैं, कितना टाइम फिजूल के कार्यों में देते हैं, लेकिन श्री प्रभुपाद जी देते ये मनुष्य जीवन सबसे कीमती और उसमें भी सबसे कीमती जो वस्तु है वो है समय। एक बार समय हाथ से निकल जाए तो वापिस नहीं आता है, इसलिए वो वृंदावन में फिर उसके बाद जब वो वानप्रस्थ जी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में वो बहुत ही सुंदर रीति से सेवा करते थे, दिन रात एक करके अपने लेखन का काम करते थे। संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद उन्होंने अपनी सबसे उत्कृष्ट कृति श्रीमद् भागवतम जो कि 18,000 श्लोक हैं जिसके अंदर, उसको उनको लिखना शुरू किया, दिन रात काम करते थे। और जब वो 70 साल के हुए, वो वृंदावन में रहते थे 70 साल की उम्र में, कितना सुंदर होगा वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी के जो गए हैं उन्होंने देखा होगा, उनका रूम भी है, उनका किचन भी है, आनंद से जी सकते थे, अंतिम समय को आनंद से भगवान की सेवा में बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने आनंद का नहीं सोचा, उन्होंने सोचा मैं अगर अकेले यहाँ पर भगवान की भक्ति करता रहूंगा तो मैं कितना सेल्फिश हूँ, मुझे तो संसार के लिए। और भगवान ने कह दिया कि न तस्मान मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः भविता न च मे तस्मात् अन्य प्रियतरो भूमि, इस भौतिक जगत में इस संसार में जो मेरे आदेश को संसार में फैलाता है, जो गीता और भागवत का प्रचार करता है, जो लोगों के जन जन के हृदय में मेरे प्रति प्रेम को उत्पन्न करता है, उससे अधिक प्रिय ना तो मेरा कोई है और ना ही कहीं कभी कोई होगा। इसी भगवान के आदेश को लेकर और अपने गुरु महाराज के वाक्यों को लेकर उन्होंने इस वृद्धावस्था में जब उनके पास कोई भी सपोर्ट नहीं था, ना धन का, ना ही उनके पास कुछ भी नहीं था, आज हम घर से बाहर निकले अगर मार्केट तक भी तब भी हम देखेंगे कितना पैसा है हमारे पास, यहाँ से हैदराबाद जाएंगे पहले से हम देखेंगे कहाँ रहना है, किधर स्टे करना है, किधर रात का प्रसाद हम लेंगे, क्या करें, पहले योजना, उनको कुछ पता नहीं था, किसी को भी नहीं जानते थे, एक पेनी नहीं थी अमेरिका, एक डॉलर भी नहीं था उनके पास, फिर भी गए, उन्होंने कहा नहीं मैं अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करूंगा, मैं पाश्चात्य देश में जाकर इस गीता और भागवतम का प्रचार करूंगा। और वो जलदूत मालवाहक जहाज है जिसमें कोई सुविधा नहीं होती है, कोई आज तो हम किसी गाड़ी को भी देखते अरे ऐसी वाली गाड़ी में नहीं थी, ये वाली वैन में कैसे जाएंगे, अपना स्टैंडर्ड, श्रीला प्रभुपाद ये नहीं देख रहे एक, एक वो शिप है जिसके अंदर कोई सुविधा नहीं, मालवाहक जहाज है और उसमें भी उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, प्रार्थना करके बोलते मुझे मेरे गुरु महाराज का आदेश है आप मुझे अमेरिका जाने दो, तब वहाँ के जो लेडी है वो बोलती है नहीं नहीं स्वामी जी मर जाओगे अमेरिका, पता है अमेरिका में गए हो कभी, वहाँ का जो वातावरण है ना वो भी आपको सूट नहीं करेगा, आप तो वैष्णव आपको कुछ खाने के लिए भी नहीं मिलेगा, 2000 दिन में मर जाओगे, जाने की जिद मत करो, बोला मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा मगर मेरे गुरु का आदेश है मैं उसको पालन करके मरना चाहता हूँ, मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा है मैं जरूर जाऊंगा पहले मर जाऊंगा। और उस समय उन्होंने जब वो शिप में जा रहे थे उनको हार्ट अटैक आ गया. एक हार्ट अटैक आया, दूसरा भी आ गया. तब वो सोच रहे थे कि पता नहीं मैंने सही किया या गलत किया. मैं इतना मंदिर में बैठा होता, आराम से भक्ति कर सकता था, लेकिन मैं आ गया हूँ यहाँ पर. तब वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, वहां पर लोग मुझे सुनेंगे भी या नहीं सुनेंगे. उनको ये भी नहीं पता था कि कौन लोग होंगे. यहाँ पर तो हम देखते हैं ना भाई, ये लोग ने हमें बुलाया प्रचार करने के लिए, तो वो लोग खुद ही ऑर्गेनाइज करेंगे. लेकिन उनको पता नहीं था कोई लोग आएंगे मेरे सत्संग में, सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, ये भी मुझे पता नहीं है. और ये भी नहीं पता था कि मैं जाऊंगा तो कहाँ रहूंगा. लेकिन भगवान को कहने लगे कि मैं जानता हूँ कि आपने योजना बनाई है मुझे वहां लेके जाने के लिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी योजना ही मेरे लिए कल्याणकारी है. मैं तो एक कठपुतली हूँ आपके हाथ की. आप जैसे चाहिए मुझे नचाइए, आप जैसे चाहेंगे मुझमें मैं वैसे करूंगा. मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपने जो मेरे लिए तय किया है वही मेरे लिए सबसे उचित मार्ग है. इसके भक्त को पूरा श्री प्रभुपाद जी का पूरा जीवन हमें भगवान के प्रति श्रद्धा दिखाता है कि कैसे हमें भगवान और गुरु के वाक्य में श्रद्धा को डेवलप करना है. और तब से जब वो गए हैं वहाँ पर कोई नहीं सुनता था. ऐसा नहीं कि श्री प्रभुपाद जी गए ना, उनको देख के सब बोले हाँ स्वामी जी बेटी है प्रचार की जी हम सुन रहे. कोई नहीं सुनता था. हिप्पीज थे वहाँ पर. हिप्पीज का मतलब क्या है? उनके जीवन का एक ही नियम था. क्या नियम था जानते हो? एक ही नियम था कि उनके जीवन का कोई नियम नहीं था. वो सारे नियमों को तोड़ने वाले थे. वो तो सारे जितने भी अपराध है ना, वो इतने मतलब प्रचुर मात्रा में उनका जीवन चलता फिरता नियमों को तोड़ना था. सारे नियमों को तोड़ते थे. सड़कों पे पड़े होते थे नंगे. उनको पता होश भी नहीं होता था कि मनुष्य है कि क्या है. जो अमेरिका की जो गवर्नमेंट है वो भी उनसे परेशान होती थी कि ये लोग की वजह से हमारा पूरा जो देश है वो कितना दूषित हो गया है. प्रभुपाद जी ने उनको जाके भगवान के नाम का रस पिलाया. ऐसे लोग ऐसा नहीं शुरू से ही सुना. वो लोग तो श्री प्रभुपाद जी का इतना अपमान करते थे, इतना अपमान करते थे. वो एक शुद्ध वैष्णव थे और उनके सामने आते थे वो स्मोकिंग करते थे, लड़कियों के साथ आके गलत कार्य करते थे. वो उनके सामने बहुत ही गलत व्यवहार करते थे. वो स्मोकिंग का धुआं जो है उनके ऊपर डालते थे. टॉयलेट की लाइन में आखिर में खड़ा कर देते उनको. इतने बुरी तरीके से व्यवहार करते थे. लेकिन श्री प्रभुपाद जी क्या करते थे जानते थे? वो सुंदर सुंदर रसगुल्ला बना के भगवान को ऑफर करते थे और अपने हाथों से पकाकर उनको खिलाते थे. ये लो भगवान का प्रसाद खाओ, ये लो भगवान का प्रसाद खाओ. और क्या करना पड़ेगा इसकी वजह? कुछ नहीं करना पड़ेगा. जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला मेडिटेशन कुछ नहीं करनी है, पहले आप खाइए. एक प्रसाद खिला खिला के लोगों को भक्त बना दिया. और पूछते थे ये जो आप नशा करते हो ना, इसको बिठा के बोलते नशा क्यों करते हो आप, नशा करने से क्या मिलेगा? तब जो नशा करते थे बोलते थे स्वामी जी आई वॉन्ट टू स्टे हाई, मैं ना बहुत हाई स्टेज पर जाना चाहता हूँ, ऊंचा उड़ना चाहता हूँ. तब श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं मेरे पास एक ऐसा नशा है जो अगर तुम कर लोगे तो सबसे ऊंची अवस्था में यू विल स्टे हाई फॉर एवर, कभी वापस भी नहीं आओगे. क्योंकि आपका नशा तो थोड़ी देर होगा फिर उतर जाएगा ना, लेकिन मेरे पास एक ऐसा नशा है जो बढ़ता जाता है, कभी नहीं उतरेगा. बोला अच्छा ऐसा कौन सा नशा होता है? तब भगवान बताते हैं रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते. वो रस जिसको चखने के बाद उसको जगने के बाद क्या होता है? स्वादु स्वादु पदे पदे, एक एक कदम पर उसका रस बढ़ता जाता है. संसार का रस तो क्षीण होता जाता है. श्री प्रभुपाद जी ने कहा जो हरि नाम का रस नशा है, जो भगवान के पवित्र नाम का, भगवान की कथा का नशा है, वो ऐसा नशा है कि एक बार यदि कोई उसमें डूब जाए तो फिर संसार का कोई दुख, कोई संकट, कोई चिंता उसको परेशान नहीं कर सकता। और लगभग एक वर्ष की कठिन मेहनत के बाद जुलाई 1966 में श्रीला प्रभुपाद जी ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन की स्थापना की और 108 मंदिरों का, आश्रमों का, स्कूलों का निर्माण किया। श्रीला प्रभुपाद जी ने पश्चिम बंगाल में मायापुर में एक बहुत ही बड़े अंतर्राष्ट्रीय केंद्र का निर्माण किया जो वैदिक अध्ययन के लिए एक उत्तम स्थान है। उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी और बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में उन किताबों को पढ़ाया जाता है। आज श्रीला प्रभुपाद जी के उन शास्त्रों का 80 से ज्यादा भाषाओं में ट्रांसलेशन हो चुका है और 5.5 करोड़ से अधिक श्रीमद् भगवद गीता वितरण हो चुकी है। सोच सकते हैं, एक भगवद गीता एक घर में अगर आई होगी, एक घर के 4 सदस्य, तो 5.5 करोड़ भगवद गीता कितने लोगों को परिवर्तित करेगी। और श्रीला प्रभुपाद जी ने आखिरी 10 वर्षों में, अपने आयु के आखिरी 10 वर्षों में पूरे विश्व की 14 बार यात्रा की। 1966 से लेकर 1977 के बीच में, और कभी हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने अपने इस जीवन में कैसे कार्य किया। कभी कभी जब भगवान किसी एक ऐसे जीव को अपनी शक्ति प्रदान करते हैं तो वो ऐसा कार्य करते हैं जो हमारी सोच से भी अधिक होता है। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि जीव कैसे कार्य कर सकता है। श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा ऐसे से कार्य किए कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक बार क्या हुआ, श्री प्रभुपाद जी जब कार्य करते थे तो बड़े बड़े लोग उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होते थे। तो हेनरी फोर्ड के पोते अल्बर्ट फोर्ड वहां पर आए श्री प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, और उन दोनों में हेनरी फोर्ड जो है उनका नाम बहुत विख्यात था। और श्री प्रभुपाद जी ज्यादा नहीं बोलते थे, कम शब्दों में अपना मैसेज कन्वे करते थे। उनसे बोला कि आप कौन हो, तब वो अपने दादा का नाम बताते हैं कि मैं हेनरी फोर्ड का पोता हूं। बोला अच्छा, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ, अभी वो कहां है जिसके आप पोते हो। तभी उसने सोचा अगर वो इतने महान थे और अब वो नहीं रहे, इसका मतलब है घर में कहां होगा किसी को पता नहीं। उसी टाइम पर सरेंडर हो गए। और इस तरह से श्री प्रभुपाद जी ने बहुत सारे लोगों को एक एक शब्द, उनके जो भक्त, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं ना, शक्तियां वैष्णव, उनके मुख से उनको इतना बड़ा बड़ा प्रचार करने की जरूरत नहीं होती है, एक शब्द में ही लोगों को भक्त बना देते हैं। आज करोड़ों जी, करोड़ों मुल्कों में जो है, करोड़ जगह मंदिर है ऐसे जहां पर श्री प्रभुपाद जी की कृपा से भगवान की सेवा हो रही है। और इसका ज्वलंत प्रमाण है ये पाकिस्तान जैसे कंट्री में, यहाँ पर कितने सारे स्कॉन टेम्पल्स हैं, कितने सारे लोग जो हैं वो चैंटिंग महामंत्र का जप करते हैं, कितने सारे भक्तों ने कंठी पहनी हुई है, तिलक धारण करते हैं, हरे कृष्ण मां, कितने सारे मंदिरों में हम देखते हैं यहाँ पर कार्तिक मास में दीप दान होता है और सब दादा दामोदर की कथा करते हैं, भागवत और गीता को श्रवण करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ श्री प्रभुपाद जी की कृपा है। और श्री प्रभुपाद जी ने ऐसा कर दिखाया, ये उनका एक भव्य कार्य था। और श्री प्रभुपाद जी भगवान की कृपा है हमारे लिए और हम सबका ये परम कर्तव्य है कि श्री प्रभुपाद जी के दिए हुए आदेशों का हम पालन करें। श्री प्रभुपाद जी ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति 16 माला जप करता है, 4 नियम का पालन करता है, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करता है, तो मैं वचन देता हूँ कि मैं उसे भगवान के धाम लेके जाऊंगा। तो हमें इतनी सरलता से, ये आज है, फिर कुछ समय के बाद तो ऐसा होगा ना कि कलयुग समाप्त हो जाएगा, ये स्वर्ण युग समाप्त हो जाएगा, 10,000 साल तक चैतन्य महाप्रभु ने ये वैष्णव गोई की थी, ये भविष्यवाणी की थी कि पृथ्वी से याची लचा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मोर नामा, और वही कार्य करने के लिए श्री प्रभुपाद जी को भेजा। लेकिन 10,000 साल के बाद यह आंदोलन समाप्त हो जाएगा, फिर मत भूलना। कि फिर भगवत प्राप्ति बहुत कठिन हो जाएगी। इसलिए हमें अभी से सिंसियर होना है, अभी से सीरियस होना है, अभी से हृदय के अंदर ये ठान लेना कि कितनी सरलता से हमको कृष्ण मिल सकते हैं। करना क्या है बस, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस सुंदर महामंत्र का उच्चारण करना है और भगवान को अर्पण करके प्रसाद लेना है, चार नियम का पालन करना है और ऐसा करते करते हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। ये श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा है। तो हम सबको स्वयं श्रीला प्रभुपाद जी के शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, आदेशों को फॉलो करना चाहिए और जल्द जल्द तक श्रीला प्रभुपाद जी के इन आदेशों को पहुंचाना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवत धाम लेकर जाने का प्रयास जो उन्होंने किया है उसको हम सफल बना सकें। आप सबका बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वयं विष्णु प्रभुपाद जी के आदेशों को पालन कर सकूं, उनके शास्त्रों को स्वयं भी पढ़ सकूं और जन जन तक उन आदेशों को पहुंचा सकूं और कृष्ण और गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। श्रीला प्रभुपाद की ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी परम विष्णु प्रभुपाद जी महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की स्वयं के मिट्टी फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी महाराज की गौरव परम सौभाग्य है कि हमारे ही बहुत एक सुंदर भक्त हैं श्यामा चंद्र प्रभु जो दुबई से आए हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो अवश्य हमें अपने शब्दामृत का पालन करवाए। धन्यवाद प्रभु। कुछ महिमा बताएं गुरु और कृष्ण की, हरे कृष्ण। इसलिए महामंत्र का उच्चारण कीजिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत जगदाधार शिव साधि गुरु। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हम सब भक्तों का स्वागत है। श्रील चैतन्य महाप्रभु ने आज से 500 साल पहले एक भविष्यवाणी की थी। भविष्यवाणी का मतलब था प्रेडिक्शन, उनको पहले पता होता कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो उन्होंने कहा था पृथ्वी से आज से यथा नगर अधिग्राम सर्वत्र प्रचार हाईवे हो रहा। ये बंगाल, ये प्रभुपाद जी बंगाल से थे। तो उन्होंने कहा था महाप्रभु ने पृथ्वी यानी कि पूरे संसार में या से नगर अधिग्राम हर गांव और हर गली कूचे में सर्वत्र प्रचार यानी कि भगवद गीता हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हर गली कूचे में होगा। वही में मौलाना मेरे नाम का प्रचार होगा श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा। तो आज से कुछ 60-70 साल पहले कलकत्ता में हम लोग जब इस्कॉन 50 का वहां प्रोग्राम करने गए थे तो जगह में हम उपस्थित थे। मैं इस्कॉन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था और वहां पर हमको सारी जगह दिखाई दी थी जिस लोगों का जन्म लिए थे, जिस घर में रहे थे, राधा दामोदर मंदिर में जहां पर रहते थे वो कोठी दिखाई थी जहां पर प्रभुपाद जी का जन्म हुआ था। अच्छा पीपल वहां पर एक दरख्त है, उस दरख्त की एज साइंटिस्ट बोलते हैं कि 60 साल होती है 60 ईयर। लेकिन वो साइंटिस्ट साहब वहां पर जब देखा तो उन्होंने कहा कि ये 200 सालों तक जीवित है क्योंकि इन्होंने श्रीला प्रभुपाद को जन्म लेते हुए देखा है, तो इनका कभी मरण नहीं हो सकता। ये श्रीला प्रभुपाद की महिमा है।
हरे कृष्णा
धन्यवाद आपको। प्रभुपाद जी है जिनकी वजह से ऐसे पति जीव घिरे हुए जीव भी जो है उनको ये सब सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चरण कमल उनको फॉलो करके और क्या क्या नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद जी उस वक्त गृहस्थ थे, संन्यास नहीं लिया था और मेडिकल का बिजनेस करते थे अपना, जैसे हम कारोबार वगैरह करते हैं। तो प्रभुपाद जी के घर पर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, सारे गौड़िया वैष्णव और बड़े बड़े परम वैष्णव और साधक जो है वहां पर जमा थे, कुछ 200-250। तो प्रभुपाद जी ने घर ऊपर नीचे बनाया था, ऊपर वाले घर में कहा कि जो भी भक्तों को रहना है, खाना पीना वो सब कुछ अवेलेबल है, वहां पर बैठ के सब कुछ कर सकते हैं। तो भक्तों ने एक मीटिंग की तो प्रभुपाद जी कोने में, जैसे वो एक सीढ़ी है, तो वहां पर अपनी माला भी पूरी नहीं हुई थी, वो अपनी जाप खाना का जाप कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे। तो वहां पर यह बहस चल रही थी कि कौन ऐसा व्यक्ति आएगा, इस श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि पूरी दुनिया में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेगा। दुनिया की जब पृथ्वी की बात आती है तो उसमें फ्रांस, इटली, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका, कैनेडा, रशिया, ये तो सब आता है। अब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम में पृथ्वी का मतलब यह भारतवर्ष था और भारतवर्ष में तो हरे कृष्ण महा का प्रचार हो गया है, तो आज ये श्लोक हम बंद कर देते। तो श्री प्रभुपाद वहां पर कोने में बैठे थे और एक शेर की तरह नरसिंह भगवान जी के अंदर आ गए और वहां पर धाड़ते हुए कहने लगे कि हाउ डेयर यू टॉक अबाउट द प्रेडिक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि भगवान और शास्त्र को अपने दिमाग के हिसाब से आप लोगों को समझा रहे हैं और बता रहे हैं। प्रभुपाद जी उस वक्त बहुत क्रोधित थे, बहुत ज्यादा क्रोधित थे। तो प्रभुपाद जी को विश्वास था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा और इस पूरे विश्व के अंदर ये तारीफ करेगा। तब तक इन लोगों को इतना पता भी नहीं था। तो हम वृंदावन गए थे तो प्रभुपाद जी के बहुत मुख्य शिष्य थे, उनका नाम था ब्रह्मानंद स्वामी और गर्गामुनि। तो हम उनके साथ 1.5 घंटा बैठे थे तो उन्होंने हमें बताया था कि जगन्नाथपुरी में जा रहा था तो एक गौड़िया भट्ट के वैष्णव आए और उन्होंने बोला ये अंग्रेज आदमी हाथ में संन्यास का डंडा, बड़ा तिलक लगाया, टोपी और ये कंठी माला पहने हुए, ये क्या कर रहा है? बोले तुम कहां से आए हो, कौन हो? तो उसने बोला कि मैं एसी भक्ति विधान स्वामी श्रीला प्रभुपाद जी का संन्यासी शिष्य हूं। बोला ये एसी भक्ति विधान स्वामी श्रीला प्रभुपाद कौन है? तो उस टाइम पर कृष्णा को नई नई छुपी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने उसी वक्त किताब खोल के उनको बताया कि ये हमारे। अरे बोले अबे बाबू, क्या कहा उनको? अबे बाबू। बोले ये तो अबे चक्रविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद है जो कलकत्ता में गृहस्थ होते थे, उनके घर पे हम बैठे थे और ये वार्तालाप था और उसमें उन्होंने धरते हुए कहा था कि हाउ डेयर यू प्रिडिक्ट यू इग्नोरिंग द प्रिडिक्शन ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु, अपने अल्फाजों में लोगों को क्यों बता रहे हो कि ऐसा नहीं ऐसा, पृथ्वी का मतलब है पृथ्वी और पृथ्वी के अंदर सब कुछ आ जाता है। तो उसने बोला कि आज मुझे विश्वास हो गया, ये वही व्यक्ति है जिसने विश्वास के साथ कहा था कि पूरे विश्व में प्रचार होगा। तो वो कहा हम सन्यासी थे, वो गृहस्थ थे, लेकिन ही वॉज अ मैन, वो व्यक्ति जो सेलेक्टेड थे श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस भविष्यवाणी को साकार करने के लिए, वो यही व्यक्ति थे जिनको विश्वास था कि ये वाणी साकार होगी और उन्होंने ये साकार करके पूरे विश्व में हरे कृष्ण महामंत्र का जाप फैलाया। तुलसी महारानी यहां पर पड़ी होगी, एक बिल्ली आएगी उस पर जो है वो यूरिन अपना पेशाब कर देगी, अपना गंदगी जो भी है वो मलमूत्र त्याग देगी वहां पर। आप आएंगे और तुलसी महारानी को कहेंगे तुलसी कृष्ण प्रियासी नामो नमो, क्या फर्क है उस बिल्ली में और आप में, कौन बताएगा? नए भक्तों में से कौन बताएगा? ये माता जी इतना बोलती है, हम लोग इतना बोलते, आप भी कुछ बोलिए, क्या फर्क है? वो जानवर है, इंसान है नहीं। विश्वास, विश्वास है तो भगवान है, विश्वास है तो भगवान नहीं है। विश्वास है तो भगवान साक्षात यहां पर विराजमान है, विश्वास है तो ये मूर्त है, पत्थर है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। तो ये सारे विश्वास की बात है। प्रभुपाद जी को शास्त्रों में और अपने गुरु के वचनों में इतना विश्वास था कि बस क्या बताया। हम बॉम्बे गए थे, सुमती मुराद जी से मिले जो माता जी बोल रही थी कि जिन्होंने प्रभुपाद जी को पैसे देके और एक जहाज में भेजा था और उनको ये वर्ड बोले थे, अरे बुढ़ा मर जाएगा, क्या करेगा वहां पर अमरीका जाके, तुम्हारी हालत तो देखो, तुम वहां पर जाके तुम्हें कोई हार्ट अटैक हो जाए, तुम्हें बुखार हो जाए, तुम्हें कौन संभालेगा वहां पर इतनी आयु के अंदर। तो गोर मोहन जो थे ان کے پتر تھے وہ خود وہاں رسپانسبلٹی کے پروگرام میں آئے تھے. انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ میں وہ آخری آدمی تھا جب جلد میں شری پروپاد کو امریکہ بھیجا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جب وہ ویزا کا پروسیس ہو رہا تھا اس سمے پروپاد جی کو 7 دن کا اسٹے کرنا تھا. آج تم جاتے ہیں وشنو کے اندر اتنے سندر سندر مندر ہیں, ہم کو ریاست سے مل رہے ہیں, یہ گلاب مل رہے ہیں, آپ لوگ سب یہاں پر پرساد کھانے کا انتظام مل رہا ہے, کتنی سویدھا ہے. تو کہتے ہیں کہ شریلا پرمپاد جی نے اتنا اپنا خون جلایا کہ 7 دن ایک کوارٹر میں رہے تھے جہاں پر نہ رننگ واٹر تھا یعنی کہ وہاں پر پانی نہیں تھا, اور چوہے بلی اور ہر طرح کے کیڑے کٹر رات دن شریلا پرمپاد کا خون چوستے تھے. اور پرمپاد جی نے 7 دن وہاں پر انتظار کیا, اور انتظار کرنے کے بعد ویزا جب ملی تب پھر یہاں پر امریکہ کے لیے پرویش کرنے لگے. تو آپ سوچئے کہ اس مشن کے لیے انہوں نے اپنا خون جلا کے اپنے آپ تن من دھن سے انہوں نے اپنا سارا دے کے تیار کر کے اپنے آپ کو پگھلایا تھا کہ ہم کو یہ امرت کی طرح جو یہ اخلاص انہوں کو مل رہی ہے, ہم جو تالیاں بجا کر خوش ہو رہی ہیں لوگوں کو بولے تو ایشور روپا جی کی کرونا ہے. تو میں سے بہت آچاریوں کے ہڈی اگر شیلا بھکتی بات کی امریکہ میں رہتے ہیں بہت بڑے رئیس گھرانے سے تھے, ان کو روپا جی مارگ درشن نہیں دیتے تو وہ کبھی بھی پاکستان نہیں آتے. انوگلا پربھو اور ایسے ہم نے بہت سارے بھکت تھے جن کو پروپا جی نے بھیجا تھا. آج ہم لوگوں کو یہ ماتا جی نے کہا نا کہ بھگوان کو شاید سمجھنا آسان ہے لیکن بھگوان کے بھکتوں کو سمجھنا اور بھی کٹھن ہے. تو پروپا جی ایک دن بامبے میں تھے, برہمانند سوامی اور گرگا منی جن سے ہماری ملاقات ہوئی ورنداون میں, انہوں نے ہم کو یہ وارتالاپ بتائی تھی. ان کی بک ہے مائی ڈیوٹی اسپرچل ماسٹر, اس کے اندر یہ انہوں نے واقعہ بھی لکھا ہے. اور ان کی سیوا کرنے میں انہوں نے مجھے بتایا کہ یہاں پر اس ٹائم میں 1971-72 میں بنگلہ دیش کی وار وغیرہ چل رہی تھی, تو ان کو پروپاد جی نے بھیجا تھا. ایک بہت بڑا سمگر چل رہا تھا پروپاد جی کا 70s میں. ایک ویکتی آیا, اس نے پروپاد جی کو کہا, جو کہ نراکار وادی تھا, نراکار وادی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بھگوان کی وگرا کو سوروپ کو نہیں مانتے, ان کو نراکار کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ نراکار وادی. یہ بھی ہمارے سناتن دھرم میں ہوتے ہیں, ان کو بھی ہمارا پرنام ہے. اور ایک ہوتے ساکار وادی. اب ان دونوں کا آپس میں کلیش چلتا رہتا ہے, وہ بھگوان کہتے ہیں بھگوان کا روپ ہے اور وہ کہتے ہیں بھگوان کا روپ نہیں. آج سائنس نے یہ پروف کر دیا ہے یو کین ناٹ گیٹ سم تھنگ فروم نتھنگ. آپ کو کچھ بھی پراپت نہیں ہو سکتا کچھ بھی میل سے نہیں. اب بول رہے ہیں کہ دھماکہ ہوا اور وشنو کا کلیان ہوا, تو ہم نے کہا کہ آپ بم لے کے آئیے, اپنے ہمارے سامنے دھماکہ کریے اور ہم دیکھتے ہیں اس میں سے وشنو نکلتا ہے کہ ارے بھیا آپ یہ روشنی جو ہے اس بٹن کو آن آف کیے بغیر اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے, پوری سرشٹی کو چلانے والا تو کوئی ہوگا نا. سورج میں کون تیل دیتا ہے؟ آپ کی پیٹرول گاڑی ختم ہو جاتی ہے تو اس میں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے. یہ سورج میں کون ایندھن دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے پوچھا یہ سوال کیا ہے؟ کوئی تو ہے جو نظام کی ہستی چلا رہا ہے, سب بول رہے نا. تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمیں پروپاد جی نے یہاں پر بھیجا, گرگا منی برہمانند سوامی آئے, ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں انہوں نے پرچار کے لیے کیا, لیکن ان کو اتنی زیادہ سفلتا پراپت نہیں ہوئی. اور پروپاد جی نے ان سے پوچھا واپسی جب آئے تو انہیں ایسے خبر ملی, انہوں نے اخبار میں پتا چلا کہ 2 امریکن یہاں پر آئے تھے, وہ مارے گئے اس دور کے اندر. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ یہاں پر ایک مچھر کالونی وہاں پر رکے تھے جو آج بھی ہے. مجھے انہوں نے ورڈ ٹو ورڈ بتایا تھا. وہ سوامی نارائن مندر بھی آئے تھے, ان کی بدھی اتنی اسٹرانگ تھی, حالانکہ ان کی ایج جو ہے نا وہ 70-75 کی رکھی تھی. ہمارے اور بھی اپنے بھکت میرے ساتھ تھے. انہوں نے کہا ہم آپ سے ابھی 2-3 مہینے پہلے کوئی جگہ آپ نے وزٹ کی ہو اس کا نام پوچھ رہے ہیں, آپ کو نہیں بتاؤں گا. تو ہم چوکت رہ گئے. انہوں نے بولا سوامی نارائن مندر رکا ہوا ہے, وہاں پر بھی رکا تھا, وہاں پر بھی مجھے لوگ ملے تھے. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم رکے تھے, وہاں پر دھماکہ ہوا اور اس کے بعد وہاں پر لوگوں سے بھاگ گئے, اور مجھے ایک ویکتی نے کھینچ لیا رات کے ٹائم میں کہ یہاں پر مت رکنا, یہاں پر کچھ خطرہ ہے. تو اس وجہ سے میں نکل آیا. تو برہمانند سوامی نے کہا کہ اگر میں وہاں رات کو رہتا تو میں مر جاتا, لیکن نیوز یہ آئی تھی اخبار میں باقاعدہ آیا تھا کہ ان کا گزر ہو گیا, اب کچھ دنیا میں نہیں رہے. پروپا جی کو پتا چلا, پروپا جی رونے لگے. پروپا جی رونے لگے. میں نے اسے 2 شیشوں کو وہاں پر بھیجا تھا. اور کیوں بھیجا تھا؟ کیونکہ اس گرمکار وادی جو تھا اس نے پروپا جی کو چیلنج کیا تھا. اے سوامی جی آپ اپنے پورے وشو کے اندر 108 مندر بنا کے بیٹھے ہیں, آپ اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ بہت بڑے بھگوان کے بھکت ہیں, آپ نے انگریزوں کو پرچار کیا ہے, آپ نے یہ کیا, آپ نے وہ کیا. بولا کہ آپ پاکستان میں ایک سینٹر اسکان کا کھول کے سکتے ہیں؟ تو پروپا جی کو بولا کہ ہاں میں کھول کے سکتا ہوں. اسی وقت برہمانند سوامی اور گرگا منی کو کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, جاؤ پاکستان. گرو مکھ پتوں کو کہا کہ آپ چیتے تھے کوریو آئی کے ہار نہ کوریو مانے. ابھی ہمارے اندر تو بہت بھوتک وادی ہے, بہت کلیش, پتا نہیں کام کرو مطلب لوگ کرا ہوا ہے, ان کے اندر ایسی کوئی آشا یا نراشا نہیں ہے. وہ گرو نے بولا اور اسی کو چلے گئے. گرو نے کیا کہا کہ تم جاؤ पाकिस्तान में प्रचार करूँ, गए पाकिस्तान आए प्रचार करूँ। तो प्रभुपाद जी बहुत रो रहे थे कि ये मेरे जो शिष्य थे अभी तक आए नहीं है, वो पाकिस्तान में उनका ध्यान हो गया है, अब मैं क्या करूं, भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो उस टाइम बॉम्बे जून के अंदर प्रभुपाद जी रामनवमी मना रहे थे। क्या मना रहे थे? अब जब रामनवमी में भगवान श्री रामचंद्र आते हैं जुम्मे, तो बड़े वैष्णव लोग जो है वो क्या करते हैं, उपवास रखते हैं, उससे फास्टिंग होती है। तो प्रभुपाद जी को जैसे ही पता चला कि गर्गा मुनि और ब्रह्मानंद स्वामी जो है वो पाकिस्तान से जिंदा लौटे, उनको जैसे ही खबर मिली तो प्रभुपाद जी रोने लगे, उनको भगवान को हद करने लगे, उनको प्यार करने लगे कि मेरे बच्चे आए हैं। तो फौरन एक सेवक को कहा कि जाओ उनके लिए हलवा पूरी रोटी सब्जी सब कुछ लेके आ जाओ। तो उसने एक सेवक से डरते हुए कहा कि हे प्रभुपाद जी, आज तो रामनवमी है और रामनवमी में जो है भगवान के भक्तों को उपवास रखना चाहिए। तो प्रभुपाद जी के अंदर जैसे नरसिंह भगवान आ गए और प्रभुपाद जी को क्रोधित कर तुम लेके आ जाओगे, मैं नहीं लेके आते। तो प्रभुपाद जी ने उसको गुस्सा कहा कि ये मेरे शिष्य हैं जिन्होंने अपना बलिदान देके प्राण देके मेरे मिशन को कामयाब करने के लिए, भगवान के लिए कार्य करने के लिए गया। आपके घर में कोई काम करता है, कोई नौकरी करता है, आपके बिजनेसमैन है, तो आप उसका ख्याल रखते हैं, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस आना जाना ट्रांसपोर्ट करने परिवार में, तो भगवान के लिए हम इतना कार्य कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, अपने घर परिवार को छोड़ के यहाँ पर आप लोग जो आए हुए हो, हम जो भी प्रचार कर रहे हैं भगवान की कृपा से, तो क्या भगवान नहीं देख रहे होंगे? भगवान अवश्य देख रहे होंगे, भगवान अवश्य देख रहे होंगे। जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पर व्यास आसन में बैठ के 150 लोगों को प्रचार कर रहे हैं और हमारी भावना गलत है। वो जो अंदर बैठ के एक प्लेट श्रद्धा और प्रेम से जोड़ रहा है, क्या पता वो भगवत प्राप्ति प्राप्त कर ले और हम यहीं के लिए बैठ जाए और एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एक भजन लिखा है श्री जयपत स्वामी महाराज ने, बोला यदि प्रभुपाद न हो तो तबे की वही तक एक जीवन वही तक पीछे। अगर प्रभुपाद इस संसार में नहीं होते, यदि प्रभुपाद न होते तबे की वही था, हम यहां बैठे होते? सच सच अपने आप से पूछिए, क्या हम लोग आज यहां बैठे होते? कई मनोरंजन कर रहे होते, कई टीवी देख रहे होते, सिनेमा जा रहे होते, घूमने फिर रहे होते, तबे की वही था ऐ जीवन वही था कीशे। ये जीवन हमारा कैसे बीता? चार महीनों में पालन पार करते, मांस मच्छी खाते, स्त्रीसन करते, नशा करते, जुआ खेलते, और ये भगवान का जो नाम हमको ये माला के रूप में मिला है, ये भी काश हम लोग उनको नहीं मिलता। ये राधा वृंदावन चंद्र के दर्शन मिलते, कुछ भी नहीं मिलता उनको, प्रभुपाद जी यदि यहां नहीं होते। तो प्रभुपाद जी एक ऐसे संत थे जिनकी बाकायदा भविष्य पुराण के अंदर भी पुष्टि हो चुकी थी, ना भूवते ना भविष्य थे, ना पिछले जन्मों में ना आने वाले टाइम में ऐसा कोई भक्त आएगा जो लोगों से कलयुग के अंदर जिनमें समय ही नहीं है लोगों के पास। हमने किसी को बोला कि ये व्यक्ति, मैंने एक व्यक्ति को, मैं कंट्री गया था बाहर, तो वहां पर हमने कुछ लोगों को बुलाया, क्या मैंने कहा कि ये लोग है ना, ये दो घंटे भगवान के नाम की माला करते। बोला दे पागल है, उनको तो ऐसा टाइम ही लोग माला करते। ये जनरल एक सेंसेशन, मतलब आप समझ लें कि क्या कहेंगे उसकी, एक जनरल आइडिया लिया गया कि लोग ऐसा करते हैं कि नहीं करते। उन्होंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दो घंटे बैठे कौन 16 माला का जाप करता है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया, प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया। गीता भागवत परिच्छेद आया, गीता और भगवत गीता का इतना प्रचार नहीं होता अगर प्रभुपाद जी, एक दफा प्रभुपाद जी लंदन में गए थे और वहां पर अंग्रेजों से मिलने लगे, तो अंग्रेज ने कहा प्रभुपाद जी को, हे महाराज, हे सन्यासी, आप यहां पर क्या करने के लिए आए हो इस सन्यासी ड्रेस के अंदर? हम लोग यहां पर मॉडर्न लोग में सूट पहनते, गाड़ियों में घूमते, हमारे पास मोबाइल फोन, हमारे पास ये है वो है, सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है, पूरी दुनिया हम चलाते हैं, आप हमको क्या ज्ञान मैसेज दान देने के लिए आए हो? तो प्रभुपाद जी ने देखो उनको ऐसी बात बोली, कहा कि हाँ बात तो सही है, आप इंडिया आए थे, ये भी पहले सब एक ही था, बड़े सके पाक में कहते थे जिसे इंडो पाक, उस समय आपने हमारे से सब कुछ लूट के गए, हीरे जवाहरात मोती हमारा कल्चर सब कुछ आप उनके डिस्ट्रॉय करके सब हमसे छीन के ले गए, महारानी जो ताज फैमिली है उसके जो हीरा है वो भी हमारा है, पूरे कोई है उसका। तो बोला तुम लोग जो है ना जाते वक्त एक चीज हमारे से ले जाना भूल गए, और वो क्या चीज थी? बोला आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी, जो मन की शांति मिलती है वो तो तुम लोग भूला भूल गए। तो मैं कोई यहां भिखारी नहीं हूं जो तुमसे भीख मांगने आया हूं, बल्कि मैं दानी हूं जो तुमको देने के लिए आया हूं, जो तुम भूल गए थे वहां। आज हमारे पास لوگ بولتے اے سی آن کرو، کیا بول دو گھر میں اے سی نہیں ہے، مڈل ایسٹ میں اگر اے سی نہیں ہوتا ہے تو ہمارے بس تھے، انہوں نے بولا کہ نہیں 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 ہمارے پاس آلریڈی ایک اے سی ہے، تو بولا کہاں اے سی نظر تو نہیں آ رہا، بولا اے سی بھکتی ودھان سوامی سریلا کو اٹھا لیتے بھکتی جانا پربھو جی آج ہمارے جیون میں بھی چنتا ہے، جو بھکتی نہیں کر رہے ہیں ان کے جیون میں بھی چنتا ہے، پربھو جی نے استھاپت کیا ہے یہ سدھانت، آپ کو شاید پتا ہوگا، آپ کو کبھی پوچھنا ہو کہ یہ بھکتی کرتے ہیں ان میں اور ان میں کیا فرق ہے، کوئی بھی فرق نہیں ہے، وہ بھی کھاتے ہیں بھگوان کا پرساد، وہ بھی نام جپتے ہیں، وہ بھی گانے سنتے ہیں، وہ بھگوان کا بھجن سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں یہ بھگوت کتھا کرتے ہیں، تو فرق کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے بھکتی کرنے سے ہمارے جیون کے اندر ایک چیز آتی ہے، عام ویکتی جو باہر جس کے اندر کٹھنائی آتی ہے نا ان کے اندر برداشت کرنے کی اس کو ٹالریٹ کرنے کا پاور نہیں ہوتا ہے، وہ ٹوٹ جاتے ہیں، وہ یہاں وہاں بکھرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا لے جائیں کہاں کریں کیا نہیں کریں، لیکن جو بھگوان کی بھکتی کرتا ہے نا اس کو ایک وشواس ہوتا ہے، جو شری پرپاد نے بک میں لکھا تھا جب وہ جہاز میں جا رہے تھے، ایک انگریز نے پوچھا تھا کس وشواس سے جا رہے ہیں، تو انہوں نے بولا اوشی رکشی میں کرشنا، کرشنا تو بھگوان سوئم، اوش کا مطلب ہے 100% رکشی میں میرا بھگوان کرشن میری رکشا کرے گا، کرشناستو بھگوان سم، کیونکہ بھگوان اس پوری کائنات کے اس پورے سنسار کے چلانے والے ہیں، سنچالن کرنے والے، یہ وشواس ہمارے اندر کیسے آئے گا؟ یہ وشواس لانا اتنا آسان نہیں ہے، ہمیں بھی 12-15 سال ہو گئے، لیکن ارجن دیو نے ہم سے بھی پوچھے یہ وشواس آج تک ہمیں نہیں ہوا، ہم ڈگمگا جاتے ہیں، لیکن جو بھگوان کی بھکتی کرتا ہے نا اس کو یہ وشواس ہوتا ہے کہ میرا کرشن میرے ساتھ ہے، کیسے بھی استھتی آئے بھگوان اسانجو بھلو کندو، بھگوان اسانجو بھگوان ہمارا اچھا کرے گا، جو بھی آپ بھگوان پہ رکھیے اور اپنے جیون کو بتاتے رہیے، تو میں کوئی تیاری تو نہیں کر کے آیا تھا، پروپا جی کے 5 بچے تھے، مجھے پوری طرح سے یاد نہیں ہے، ہم سوری
کوئی نسل ہے،
ہاں ابھی ان کے ہیں، ان کا جو لاسٹ پیدا تھا ان کی لاسٹ ایئر جو ہے 8 سال ان کی مرتی ہوئی تھی، وہ باقاعدہ خود وہاں پر آئے تھے، پروپا جی کی طرح ہی نظر آتے ہیں دکھتے ہیں، ان کے بچے ان کے پوتے وغیرہ، ان کی بیٹی جو ان کی سسٹر جو تھی ان کے بھی بچے وغیرہ تھے، ان کی ہے نسل، لیکن وہ ایک دفعہ وقت آیا اس نے پروپا جی کے بیٹے نے کہا کہ 108 بندے میرے باپ کے ہیں اور میں اس کا راجا ہوں، تو پروپا جی نے کہا کہ راجا کا بیٹا راجا نہیں ہو سکتا، پرجا میں بھی راجا ہو سکتے ہیں، تو پربھو جی نے کہا کہ نہیں یہ سارے بھکت یہ جو مندر ہیں وہ میرے بچوں کے، اور بولا کون میرے بچے، بولا یہ سارے بھکت جنہوں نے پنکل تلک لگایا ہوا ہے، کنٹھی پہنی ہوئے، ہاتھ میں رکھے کا معاملہ کی مدد کی، تو پربھو جی نے سوسائٹی بنائی جاگیردار بیس پہ نہیں، کہ اس گرو کے پیچھے اس کا بیٹا آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، اس کا بیٹا آئے گا، ہاں ڈاکٹر کا بیٹا پاسبل نہیں کہ ڈاکٹر بنے، ڈاکٹر کا بیٹا وہ بولیں گے کہ ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ہے اس کو ریسپیکٹ دو، بٹ اٹ از ناٹ پاسبل کہ وہ ڈاکٹر کا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، تو پربھو جی نے استھاپت کیا کہ جو یوگ ہے وہ رہے گا، جو یوگ ہے وہی پرچار کرے گا، جو یوگ ہے وہی منتر بنائے گا اور پرچار پورے وشو کے اندر کرے گا، تو پربھو جی نے استھاپت کیا، تو جو کام پربھو جی نے کیا آپ انٹرنیشنل لیول پہ دیکھ لیں، ساری بکس پڑھ لیں، ہماری کسی بھی اپنی ریسرچ ہے، ہم نہیں سمجھتے کہ سارے سنتوں کو مہاتما کو ہمارا نام ہے، لیکن جو کام شری پربھو جی نے کیا آئی ڈونٹ تھنک تو پورے وشو کے اندر آپ دیکھو گے کہ اس لیول کا تعریف کوئی کر سکتا ہے، تو پربھو جی کی مہیما تو ایسا ہے کہ ہم لوگ پوری رات بھی بیٹھے رہے ان کے بارے میں بولتے رہے تو کچھ وہ نہیں ہے، بس ہماری ایک آپ لوگوں سے ونتی ہے، ہم ڈفرنٹ کنٹریز میں جاتے ہیں پرچار کرنے کے لیے اور وہاں پر دیکھتے ہیں اس جیسے دیش کے اندر، میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے کہ ہم لوگوں کو ایکتا کی ابھی یہاں پر بہت ضرورت ہے، ایک تو ہم لوگ 1% 2% ہیں مائنورٹیز ہیں، 3 سے 3.5 ملین ہندوز آر لیونگ دیئر، پھر ان ہندوؤں کے اندر بھی جو ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ والے ہیں ہم وہ والے ہیں ہم یہ والے ہیں ہم وہ والے ہیں، تو ہم چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی فرض سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن دھرم ایک ہے پنتھ انیک ہے، دھرم ایک ہے اور پنتھ انیک ہے، تو چاہے کس کو فالو کرتے ہیں کس کو مانتے ہو اس کی شردا آپ کا اور ان کا تعلق ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایک طرف ہم کہتے ہیں ہم ویشنو جو ہے تو وہ چوٹی کو بھی جو ہے پرنام کرتے ہیں، اس کو بھی ہم آدر دیتے ہیں، پتھر بھی ہمارے پیر میں لگ جائے، جب ہم اپنے سماج کی بات کرنے لگتے ہیں تو سماج کے اندر کیا پرابلم ہے کہ بولتے ہیں یہ والا ہے اور وہ والا ہے، तो हम लोग ऑलरेडी एक तो माइनॉरिटी है, कम लोग हैं यहाँ पर, फिर उसमें हमारे बहुत सारे पंथ बिखरे हुए हैं। जैसे कि मुझे यहाँ से अगर सदर जाना है तो मिनी मार्केट से भी रास्ता जा रहा है, शेरशाह से भी जा रहा है, क्लिफ्टन से भी जा रहा है, केवाड़ी से भी जा रहा है, लेकिन वो सारे रास्ते जो है, अच्छा हवाओं से भी रास्ते जाते हैं, वो रास्ते सारे मिलते तो सदर में ही है ना, जाने के रास्ते बहुत हैं। इसी प्रकार से पंथ अनेक है, धर्म एक है। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की जब हम बात करते हैं तो एटलीस्ट उस धर्म के नाम पे हम लोग सब एक साथ तो हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे बहुत सारे लोग हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्रुपों में जुड़े हुए, इस वजह से हम लोग उनको तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि अगर आप देखो एक लकड़ी है, एक पेंसिल, आपने एक एक पेंसिल को तोड़ना बहुत ईजी है। एक पेंसिल को तोड़ेंगे, 50 पेंसिल को आराम से आप तोड़ सकते हैं 50 मिनट में, 50 सेकंड तक टक 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 करके तोड़ लेंगे। लेकिन ये अगर 50 पेंसिल की लकड़ी जो है अगर एक साथ हो जाएगी ना, तो उसको तोड़ना मुमकिन नामुमकिन है, उसको तोड़ना नामुमकिन। तो हमारे जितने भी सनातन धर्मी हैं, आपको पता है जो आइडियोलॉजिस्ट है, एक जो ज्योग्राफिकल स्टडी करते हैं, उन्होंने एक वर्ड बताया था कि हम लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, आप हमारे 108 पुराण, 18 उपनिषद, महाभारत, रामायण और 4 वेद पुराण स्थान के देखेंगे, हिंदू नाम की कहीं पर भी अल्फाज नहीं लिखा हुआ है, हिंदू नाम का कोई अल्फाज नहीं है। ये हमें टैग दिया गया, बोले सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे, सिंधु नदी के उस पार जो लोग रहते थे, तो पर्शियन जबान के अंदर सर नहीं होता था, पर्शियन लैंग्वेज जो है उसके अंदर सर नहीं है, उनके मुंह से सिंधु नहीं निकलता था, उनके मुंह से क्या निकलता था, हिंदू निकलता था। अब हिंदुस्तान में रहने वाला हिंदू, पाकिस्तान में रहने वाला पाकिस्तानी, इंग्लिस्तान में रहने वाला इंग्लिश, अमेरिका में रहने अमेरिकी। तो जब उन्होंने ये प्रूव किया कि हिंदू नाम की कोई टर्मिनोलॉजी है ही नहीं, तो उन्होंने बताया कि भाई हम लोग हैं कौन, तो उन्होंने बोला हम सनातन धर्मी हैं। हम लोग सब लोग कौन है, बाबा गुरु नानक भी सनातन धर्मी, हम भी सनातन धर्मी, और भी जो अंतिम अनेक है वो भी सनातन धर्मी। तो एक पेंसिल को तोड़ना बहुत ईजी है और अनेकों पेंसिलों को तोड़ना बहुत। लास्ट वीक ही मैं देख रहा था, वो बाबा नानक साहब जो है वो जगन्नाथपुरी आए थे, उन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ हाथ उठा कर कहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम। तो ये प्रेम की बात हुई कि नहीं हुई, उस प्रेम से हम एक नाता तो तोड़ सकते हैं ना, तो उस छतरी के नीचे तो हम लोग आ सकते हैं। तो सब लोग यहाँ पर आप लोग जो माइनॉरिटीज हैं, उन लोगों को एक संदेश है कि मेहरबानी करके आप लोग सब मिलजुल के चले, आपस में आप लोग अगर ये वाला वो वाला करेंगे तो हमारा समाज बिखर जाएगा और एक छोटी छोटी पेंसिल को तोड़ना बहुत दुखी रहेगा। तो आप टॉलरेट करें, बर्दाश्त करें, आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं। आप बाहर कंट्रीज में जाए, वहां पर कोई भी लोग आर्ग्यूमेंट यानी कि बहसबाजी नहीं करते, वो डिबेट करते हैं। डिबेट में और डिस्कशन में बहुत फर्क है। आर्ग्यूमेंट का ये होता है कि मान लिया कि ये आदमी गलत है तो उसको इतना पसंद नहीं करते, वो नहीं करते हैं। हमें भक्तों को नम्रता रहना है। महाभारत के अंदर लिखा है आप इतनी मालाएं कर लें, आप इतनी बड़ी चोटियां रख लें और बड़े तिलक लगा लें और बड़ी बड़ी धारियां रख लें, लेकिन उसके बावजूद भी आपके हृदय में नम्रता और आपके हृदय में कॉम्पेशन और विनम्रता नहीं आई है, तो इसका मतलब है आपने सब चीजें ड्रामेबाजी की है, बेचारों ने अपना भी टाइम खराब किया और उनका भी टाइम खराब किया। तो ये पुराने जमाने के लोगों में क्या खूबी थी कि वो टॉलरेट बहुत करते थे, उनके अंदर बर्दाश्त करने की बहुत ताकत होती, जो कि अभी आने वाली नस्ल के अंदर नहीं है। छोटी मोटी बातों में तोड़ देते, जोड़ देते हैं, चले जाते हैं, ये करते हैं। तो ये संस्कार भी थी। आप तो बहुत अच्छे भक्त हैं, घर में लेके आते हैं भक्तों के, बच्चों को अपने संस्कार रखते हैं, गुरुकुल खोलिए उसमें आप लोग कार्य कर रहे हैं। एक माता प्रचार कर सकती है तो इतने सारे प्रभु जी बैठ के क्यों प्रचार नहीं कर सकते।
अगर जीवन और भक्ति की बात आई है तो लास्ट वीक जो है ऑनलाइन पे राधिका माता जी की रेस्पॉन्स, उससे मैंने सवाल किया था कि भाई गृह जीवन में आने के बाद कितने बच्चे उन्होंने, कम बच्चे संसार कराना, और अगर बच्चे हो, अगर बेटी हो और बेटा हो, दुख का कारण बन गई है तो क्या उनको त्याग कर सकते हैं। उन्होंने सही जवाब दिया।
हम 5 मिनट में क्लास कर विराम करेंगे। ये प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा कि कितने बच्चे होने चाहिए गृहस्थ, क्योंकि यहाँ पर कोई ब्रह्मचारी सन्यासी तो बैठा नहीं है, हम सारे भक्त जो है वो भक्ति कर रहे हैं, गृहस्थ हैं, वो कितने बच्चे होने चाहिए। वैसे ये जनरल टर्मिनोलॉजी है और डिफरेंट डिफरेंट आपके क्या फाइनेंशियल आपका है, किस तरीके से आप चलाते, सारी चीजें डिपेंड करती है कि कितने बच्चे आपके होने चाहिए। वैसे भक्ति के मार्ग में ऐसे होता है कि आइडियली तीन बेस्ट होते हैं, उसमें से एक जो होगा वो होगा कारोबारी। मैं आपको देखिए सच्ची बात सर, ये चीज आपके शास्त्र वगैरह में शायद रेफरेंस नाम मिले जब मुझे पकड़े तो ये कहाँ लिखा हुआ है। तो एक जो होगा वो होगा बिजनेसमैन, वो चलाएगा घर को फाइनेंशियली, ठीक है। एक होगा जो पूरे घर के अंदर माता पिता की सेवा करेगा, रखना उठाना ये वो सब कुछ चीजों के अंदर इन्वॉल्व होगा, सोशल लाइफ के अंदर बहुत निपुण होगा। एक बच्चे को अपने अंदर ना आप घर के अंदर उसको डेडिकेट करके प्रचार के लिए भगवान की सेवा कीजिए। और आजकल के दौर में लड़कों से ज्यादा तो बेहतर बच्चियां होती है, छोटी बच्चियां जो होती है ना वो अपने माँ बाप से भी प्रेम करते हैं, घर को संभालती है, चलाती है।
अब मीरा भाई के अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आए जीवन में,
नहीं प्रभु जी मीरा भाई की बात मत करिए। देखिए पहले तो हम लोग खुद जो है वो माला ठीक से करते नहीं है और हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं पीएचडी की, यानी कि मैट्रिक के स्टूडेंट है और मीरा का राणा जी का विश्व का प्याला हंस कहीं पी गई मीरा। अभी आप मुझे बोलो प्रभु जी आप बहुत अच्छे भक्त हो, ये मैं विश्व ला के दूंगा, मैं तो नहीं पीऊंगा। मैं आपको क्या बोलूँ, मैं खुद भी नहीं पीऊंगा। वो तो मीरा भाई का जो कॉन्सेप्ट था, उनकी जो भक्ति थी वो बहुत उत्तम लेवल की थी। सब भक्तों में सबसे बड़ा स्थान राधा रानी को दिया जाता है, गोपियों को क्यों दिया जाता है? उन्होंने सब कुछ छोड़ के भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी के पीछे भागने लगी। अगर हमारे समाज के अंदर कोई औरत स्त्री अगर कोई छोड़ के किसी पुरुष के आगे जाए तो उसको बोलेंगे बच्चलन है, उसको क्या कहेंगे बच्चलन है। लेकिन उन्होंने कहा सर्व धर्मा प्रत्याज माम एकम श्रम प्रत्या अहम कम सर्व पाप है मोक्षा ईशान। ये सारे बहुत आगे की बातें हैं। हम तो कभी
माता जी ने बताया चाय की पत्ती चाहिए या पत्ती चाहिए,
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। श्री श्री वृंदावन चंद्र भगवान की आप सब लोगों को सुन धन्यवाद। आप लोगों ने इतना सुना, हम बहुत आभारी हैं यहाँ पर भगवान कमेटी के और मंदिर के जो वातावरण ये इस तरह बेहतरीन तरीके से चला है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ये कार्य और आगे चलता रहे और दामोदर आरती के लिए हम कार्य करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद आपको। हरे कृष्ण।